नमस्कार प्रिय श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दूसरा इतिहास नामक पुस्तक का अध्ययन विस्तार से कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा मसीही नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्र, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन मित्रों का जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों दूसरे इतिहास की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनवाया और जब वाचा का संदूक मंदिर में लाया गया तब असंख्य बलि चढ़ाई। मेरे मित्रों, आइए आज आप मेरे साथ दूसरे इतिहास की पुस्तक 5 अध्याय उसको निकाल लीजिए और आज हम पढ़ेंगे 5 अध्याय उसके 6 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और राजा सुलेमान और सब इसराइली मंडली के लोग जो उसके पास इकट्ठे हुए थे, उन्होंने संदूक के सामने इतनी भेड़ और बैल बलि किए जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण ना हो सकती थी। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, यहाँ विचार यह है कि बलि के पशु गिने नहीं गए क्योंकि वे मसीह के बलिदान का प्रतीक थे। मसीह की बलि को आंकना संभव नहीं है। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास के पुस्तक 5 अध्याय उसके 7 से 9 पद में लिखा है, तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के तले रख दिया। संदूक के स्थान के ऊपर करूब तो पंख फैलाए हुए थे जिससे वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढांपे थे। डंडे तो इतने लंबे थे कि उनके सिरे संदूक से निकले हुए भीतरी कोठरी के सामने देख पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई न पड़ते थे। वे आज के दिन तक वही है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि आज के दिन तक से अर्थ है इतिहास की पुस्तकों के लिखे जाने के समय तक। उन्होंने वाचा के संदूक से डंडे निकाल लिए क्योंकि अब वाचा के संदूक को कहीं लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि वाचा का संदूक जंगल में सीनै पर्वत पर बनाया गया था। उस समय इसराइल के वंशज 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे थे और उन्होंने जब जब यात्रा की तब तक वाचा का संदूक उनके आगे आगे चलता था। प्रतिज्ञा के प्रदेश में भी प्रवेश करते समय वाचा का संदूक उनसे आगे चला था और यर्दन पार हुआ भी था। मेरे प्रियो, प्रतिज्ञा के देश में भी वाचा का संदूक अलग अलग स्थान पर रखा जाता था। आपको स्मरण होगा कि एक बार तो पलिस्ती उसे ले गए थे परंतु उन्होंने उसे लौटा दिया। मेरे मित्रों, दाऊद वाचा के संदूक को यरूशलेम में लाया और सियोन पर्वत पर रखा और मंदिर बन जाने तक वह वहीं पर रहा। अब समय आ गया था कि वाचा का संदूक परम पवित्र स्थान में लाया जाए और उसके डंडे हटा दिए गए। अब उसे कहीं न कहीं जाना था। इसराइल के पुरुषों को उसके समक्ष वर्ष में 3 बार फसह, पेंतिकोस्त और झोपड़ियों के पर्वों पर उपस्थित होना अनिवार्य था। इसका अर्थ यह हुआ कि अब से आगे वे सर्वदा इन 3 पर्वों पर यरूशलेम आया करेंगे और वाचा के संदूक के समक्ष उपस्थित होंगे। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि वाचा का संदूक मसीह का प्रतीक है, उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है। वाचा के संदूक के ऊपर दया का आसन है, जो उसके मुक्ति कार्य का, उसके लहू बहाने का और हमारे प्रायश्चित के तथ्य का प्रतीक है। यह सब अब स्थाई है। इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। जी हाँ, यह स्थाई है, आधारभूत है, यह स्थापित है। मुझे यहाँ उपमा का प्रयोग करने दीजिए। डंडों को निकाल दिया जाना या निकाल दिया गया है, उद्धार का अन्य कोई मार्ग नहीं होगा। कहने का अर्थ यही है कि उसके लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 पद में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर पत्रस ने विश्वासियों से कहा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हाँ मेरे मित्रों, डंडों को निकाल दिया गया है और अब वाचा का संदूक स्थाई है। डंडों का निकाला जाना विश्राम का प्रतीक भी है। प्रभु यीशु उसके पास आने वालों को विश्राम देता है। विश्राम का स्थान भी तो होना चाहिए। मेरे मित्रों, हमारे प्रभु यीशु ने उस स्थान का उल्लेख किया था जब उसने अटारी में अपने शिष्यों से कहा, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 2 और 3 पद में पढ़ते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे मित्रों, हमारे लिए स्थान तैयार कर दिया गया है और एक दिन हम वहां पर जाएंगे। उस स्थान की एक विशेषता यह है कि वह स्थायी निवास है। यह एक सत्य है कि वह अनंत काल का स्थान है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर का नगर है और यह स्थाई है, तथा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। इसे हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 21 अध्याय के 22 पद में पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, डंडे निकाले जा चुके हैं। यह कैसी उत्तम बात है, यह कि अब हमें भटकना नहीं पड़ेगा, हमें परमेश्वर की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। पौलुस ने रोम के विश्वासियों को लिखा है कि हमें स्वर्ग में चढ़कर मसीह को नीचे लाना नहीं है और न ही अधोलोक में उतर कर उसे ऊपर लाना है। वह हमारे लिए यहीं उपस्थित है। यह स्थाई है, अनंत है, यह कभी भी नहीं बदलेगा। उसने डंडे निकाल दिए हैं। हम आगे पढ़ते हैं, दूसरे इतिहास की पुस्तक 5 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, संदूक में पत्थर की उन दो पटियाओं को छोड़ कुछ न था जिन्हें मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखा जब यहोवा ने इसराइलियों के मिस्र से निकलने के बाद उनके साथ वाचा बांधी थी। मेरे प्रियो, दो वस्तुएं मूसा ने वाचा के संदूक में रखी थी, वे वहां नहीं हैं। हारून की लाठी और मन्ना का पात्र। गिनती की पुस्तक अध्याय 17 में आपको स्मरण होगा कि यदि इसराइली मन्ना एकत्र नहीं करते तो वह विलोप हो जाता था और यदि वह उसी दिन खाया नहीं गया तो वह खराब हो जाता था। यही मन्ना का पात्र में रखकर स्मारक स्वरूप सुरक्षित किया गया था, परंतु अब वहां वह नहीं था। मन्ना मसीह जीवन की रोटी का प्रतीक है। वह अपनों को जीवन की रोटी खिलाता है। हारून की छड़ी से कोपल फूट निकली थी, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक उसके 16 अध्याय में पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, यह मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक है। यह सब प्रभु यीशु में ऐतिहासिक रूप में पूरा हुआ है। यीशु मर गया, उसकी देह को दफन किया गया और वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यह पुनरुत्थान मानवीय नहीं, ईश्वरीय कृत्य है। उसके ईश्वरत्व का प्रदर्शन है। प्रभु यीशु मसीह की याजक वृत्ति उसके पुनरुत्थान पर निर्भर करती है। जिस प्रकार हारून की याजक वृत्ति उसकी छड़ी पर कोपल फूट निकलने से सिद्ध हुई थी, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा इस बात का प्रगटीकरण है कि कोपल फूट निकलने से सिद्ध हुई लाठी पुनरुत्थान का प्रतीक है। हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 5 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने तो अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। मेरे मित्रों, देखिए, सब पारियों के याजक समर्पण में उपस्थित थे, गायक भी थे, संगीत वाद्यों के साथ गायन मंडली भी वहां पर उपस्थित थी, 120 तुरही बजाने वाले थे, साथ में वीणा झांझ बजाने वाले लोग भी उपस्थित थे। तब हम आगे देखते हैं, दूसरे इतिहास की पुस्तक 5 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, तो सब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। मेरे मित्रों, यह एक महान अवसर था। तब हम आगे देखते हैं, दूसरा इतिहास के पुस्तक 5 अध्याय उसके 14 पद में, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 6 में इस अवसर पर सुलेमान का संदेश और प्रार्थना को देखते हैं। आइए हम आगे बढ़ें और देखें सुलेमान का संदेश। सुलेमान का यह संदेश एक प्रभावी संदेश था। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 6 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, और राजा ने इसराइल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और इसराइल की पूरी सभा खड़ी रही। मेरे प्रियो, अब वह प्रजा को संबोधित करता है। तब हम देखते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 6 अध्याय के 4 पद में, और उसने कहा, धन्य है इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है। दाऊद ही वास्तव में मंदिर निर्माण के श्रेय का अधिकारी है। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा इतिहास के पुस्तक 6 अध्याय उसके 5 और 6 पद में, कि जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने न तो इसराइल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, और न कोई मनुष्य चुना कि वह मेरी प्रजा इसराइल पर प्रधान हो, परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहां हो, और दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा इसराइल पर प्रधान हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने दिव्य इच्छा में यह चुना कि यरूशलेम इस पृथ्वी का केंद्र और राजधानी हो। एक दिन ऐसा ही होगा। उसने यरूशलेम को चुना कि मंदिर स्थल हो। उसने दाऊद को राजा चुना और अब दाऊद के वंशज को। यह परमेश्वर की निरंकुश और परम इच्छा थी जो उसने यह चुनाव किया। अब मेरे मित्रों, हमारे चुनाव परमेश्वर के चुनावों से सर्वथा भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि यह मेरा निर्णय होता तो मैं यरूशलेम को कभी नहीं चुनता। मेरे विचार में उस क्षेत्र का सबसे सुंदर स्थान सामरिया में है, जहां अहाब और इज़राइल रहते थे। अनेक लोगों ने पहाड़ पर घर बनाए थे जिससे कि उन्हें घाटी का दृश्य दिखाई देता रहे, परंतु सामरिया से आप चारों ओर देख सकते थे। पश्चिम में आप भूमध्य सागर देख सकते हैं, पूर्व में यर्दन की घाटी है और गलील सागर है, दक्षिण में यरूशलेम दिखाई देता है और उत्तर में हरमन पर्वत। यह वास्तव में एक अति सुंदर दृश्य है। मैं तो इसी स्थान को राजधानी चुनता, परंतु परमेश्वर ने मुझसे राय नहीं ली और न ही मेरी इच्छा पूछी। उसने यरूशलेम का चुनाव किया। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की दिव्य इच्छा है। परमेश्वर कहता है, मैंने यरूशलेम को चुन लिया है, मैंने यरूशलेम को चुना है। मेरे मित्रों, परमेश्वर को मन में आपके और मेरे लिए भी इच्छा है। मैं वास्तव में यह मानता हूं कि परमेश्वर की संतान के लिए उसके पास स्थान निश्चित है। आपके रहने के लिए एक विशेष स्थान है। आपके लिए उसकी इच्छा में आपके जीवन का सर्वस्व है। आपके और मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है उसकी इच्छा के अनुरूप हो लेना। मेरे मित्रों, हम मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा और परमेश्वर की प्रधानता के विषय एक और खड़े होकर जितना चाहें विवाद करें, परंतु यह वास्तव में निष्फल समय की बर्बादी होगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो बड़े लाभ की बात है। यह है उस स्थान पर पहुंचना जहां परमेश्वर ने क्रूस का चिन्ह डाला है। वह स्थान उसने आपके और मेरे लिए चुना है। जब आप और मैं उस स्थान पर पहुंचते हैं, तब हम सही स्थान पर होते हैं। परमेश्वर की इच्छा महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यरूशलेम का चुनाव किया। परमेश्वर ने दाऊद को चुना और किसी दूसरे को नहीं। हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 6 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, मेरे पिता दाऊद की यह मनसा थी कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए। ध्यान दीजिए, सुलेमान के कहने का अर्थ यह है कि उसने वही किया है जो दाऊद करना चाहता था। वह मंदिर निर्माण में दाऊद की इच्छा पूरी कर रहा था। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास के पुस्तक 6 अध्याय उसके 10 से 11 पद में लिखा हुआ है, यह वचन जो यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इसराइल की गद्दी पर विराजमान हूँ, और इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है, और इसमें मैंने उस संदूक को रख दिया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने इसराइलियों से बांधी थी। मेरे प्रियो, यही समझना सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है, सुलेमान की प्रार्थना। और अब यह प्रार्थना समर्पण की एक अद्भुत प्रार्थना है। हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 6 अध्याय उसके 12 और 13 पद में पढ़ते हैं, तब वह इसराइल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इसराइल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा। मेरे प्रियो, यदि आप प्रार्थना में अंग विन्यास के बारे में उलझे हुए हैं, तो सुने कि सुलेमान ने घुटने टेक कर प्रार्थना की थी। घुटने टेकना सृष्टिकर्ता के सामने प्राणी का सर्वोत्तम अंग विन्यास है। जी हाँ, सुलेमान धन्यवाद के साथ आरंभ करता है। हम पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 6 अध्याय उसके 14 और 15 पद में, हे यहोवा, हे इसराइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसको हमारी आंखों के सामने पूरा भी किया है। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है क्योंकि वह सृजनहार है, और उसकी दया और विश्वास योग्यता के लिए वह उसे धन्यवाद कहता है। वह अपने अनुग्रह में दाऊद के मन में, राष्ट्र में और सुलेमान के मन और जीवन में प्रवेश कर गया था। मेरे प्रियो, आज के हमारे युग में अनेक विश्वासी परमेश्वर का अनुभव पाना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे दूर खड़े हुए संतुष्ट हैं और प्रभु की भुजाओं को कठोर बनाते हैं। वे उसे दूर रखते हैं, तथापि वे कहते हैं, जी हाँ, मैं विश्वासी हूँ। मेरे मित्रों, आइए हम उसके घनिष्ठ संबंधों में और सच्ची सहभागिता में आ जाएं, उसे और निकटता से जान ले, उसे अपने जीवन में प्रवेश करने दें। दूसरे इतिहास के पुस्तक 6 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू क्यों कर समाएगा? मेरे मित्रों, यह एक महत्वपूर्ण पद है जिसका संदर्भ मैं पहले भी दे चुका हूं। निश्चय ही ना तो सुलेमान और न ही इसराइल राष्ट्र परमेश्वर को संदूक में बंद करने का विचार रखता था जब उन्होंने उसके लिए मंदिर बनाया था। इसकी अपेक्षा मंदिर परमेश्वर और मनुष्यों का परस्पर भेंट करने का स्थान था। मेरे प्रियो, दूसरा इतिहास 6:20 में लिखा हुआ है, वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहे और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। यहाँ पर देखिए, यह मंदिर परमेश्वर द्वारा मनुष्य से भेंट करने का स्थान था। दूसरा इतिहास के पुस्तक 6:21 में आगे लिखा है, और अपने दास और अपनी प्रजा इसराइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ाकर करें उसे सुन लेना, स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। मेरे प्रियो, मंदिर को इसराइल राष्ट्र का केंद्र होना था। हम आगे देखते हैं दूसरा इतिहास 6:24-25 में, फिर यदि तेरी प्रजा इसराइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट करे तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इसराइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको और उनके पुरखाओं को दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि वे पाप करें तो मंदिर में आ जाएं और उन्हें क्षमा प्राप्ति होगी। तब हम देखते हैं दूसरे इतिहास के पुस्तक 6:26 में, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरे, ध्यान दीजिए, यदि उनके पाप के कारण देश में अकाल पड़े तो उन्हें क्या करना था कि परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए लौट आना था। तब हम आगे देखते हैं दूसरे इतिहास के पुस्तक 6:28 में लिखा हुआ है, जब इस देश के काल व मरी झुलस हो व गिरोई का टिड्डियां व कीड़े लगे व उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेरे रखें व कोई विपत्ति व रोग हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन पर चाहे कैसी भी विपत्ति आ पड़े उन्हें मंदिर में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। तब हम आगे देखते हैं दूसरे इतिहास के पुस्तक 6:30 में, जहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें जानता है और यही कारण है कि हमें परमेश्वर के साथ व्यवहार करना है। जी हाँ, तब हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 6:32-33 में आगे पढ़ते हैं, फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इसराइल का न हो, जब वह तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए और आकर इस भवन की ओर मुंह किए हुए प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुने और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसके अनुसार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इसराइल की नाई तेरा भय माने और निश्चय करें कि यह भवन जो मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह मंदिर सिर्फ इसराइलियों के लिए नहीं परंतु यह सब के लिए है जो परमेश्वर से इस मंदिर में भेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरे इतिहास के पुस्तक 6:36 में, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंधुआ करके किसी देश को चाहे वह दूर हो चाहे निकट ले जाएं। ध्यान दीजिए, यदि मैं किसी अन्य देश में बंदी बनाकर ले जाए जाएं तो मंदिर की ओर मुख करके परमेश्वर को पुकारें। और दानियल ने भी यही किया। आपको स्मरण होगा कि वह यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर घुटने टेक कर प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना भी सुनी। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 6 अध्याय उसके 38 से 40 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि सो यदि वे अपने बंधुआई के देश में जहां वे उन्हें बंधुआ करके ले गए हों अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर बनाया है मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें। मेरे मित्रों, यहाँ पर भी हम देखते हैं मंदिर को भेंट करने का स्थान होना था। तब हम आखिरी में देखते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 6 अध्याय उसके 41 और 42 पद में, अब हे यहोवा परमेश्वर उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर तेरे याजक उदार रूपी वस्त्र पहने रहें और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहें। हे यहोवा परमेश्वर अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी न कर, तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख। मेरे मित्रों, यह एक महिमामय प्रार्थना है और ध्यान दीजिए कि वह दाऊद को दिखाई गई परमेश्वर की दया के आधार पर अपनी प्रार्थना करता है। आपको और मुझे भी प्रार्थना करना है क्योंकि मसीह ने लहू बहाकर हमारे लिए दया आसन तैयार किया है। उसने क्रूस पर बहे अपने लहू के द्वारा हमारे लिए शांति स्थापित की है और परमेश्वर हम पर दया करने के लिए सदैव तैयार है। लेकिन क्या आज आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में सुलेमान की प्रार्थना के द्वारा अवश्य ही आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करे, अपने निकटता में बनाए रहे और आप उसमें बढ़ते जाएं।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राज